मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आज आप सबसे फील्ड कमांडर के बारे में कुछ बातें करूंगा, यदि वक्त बच पाया तो। लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं जो मुझे थोड़ी सी महत्वपूर्ण मालूम पड़ रही हैं। पहली बात दोस्तों, मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट की थी कि आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को कलेक्टर की आत्मा में प्रवेश करा लीजिए या कलेक्टर की आत्मा को अपने अंदर प्रवेश कर लीजिए, और तूफान यदि आए तो आप क्या क्या कदम उठाएंगे इसके बारे में एक प्लान तैयार करें। मुझे खुशी है कि कुछ स्टूडेंट ने अपने प्लान मुझे लिख करके भेजे हैं, और मुझे यह बताते हुए और भी ज़्यादा खुशी हो रही है कि उन्होंने जो प्लान तैयार किया है वो काफ़ी कुछ व्यावहारिक प्लान है, काफ़ी कुछ व्यावहारिक है। हाँ, प्रायोरिटी पर थोड़ा सा बात की जा सकती है कि कौन से टॉप प्रायोरिटी पर होना चाहिए, कौन इसके बाद होना चाहिए, लेकिन कम से कम व्यावहारिक दृष्टि से आप लोगों ने ठीक ठाक सोच लिया है। अब मुझे नहीं मालूम कि आपने जो कुछ भी उसमें लिखा है उससे पहले आपने इस टॉपिक को पढ़ा था, जो भी हमारा रिस्क मैनेजमेंट होता है या डिजास्टर मैनेजमेंट के समय क्या क्या करना चाहिए, आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। खैर, उससे ज़्यादा कंसर्न भी नहीं है। अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है कि आप उसका उपयोग करना जान रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे नहीं मालूम कि कितने लोगों ने यह अभ्यास किया होगा। दोस्तों, मेरा कंसर्न इस बात से बिल्कुल नहीं है कि आपने क्या क्या लिखा है और सही लिखा है गलत लिखा है, उसमें आपको कितने नंबर दिए जाने चाहिए, नॉट एट ऑल। मेरा उद्देश्य तो केवल यह है कि आपके दिमाग को सोचने की आदत पड़े। उसे सोचने की आदत नहीं है, चिंतित रहने की आदत है, वो सोचता नहीं है, वो पढ़े हुए को बस ज्यों का त्यों कागज पर उतारना जानता है। मैं चाहूंगा कि जब भी ये बात आपसे कही जाती है आप अभ्यास करें। देखिए, इससे आपको लाभ है, मुझे आप लिख करके भेजे न भेजे उससे कोई मतलब नहीं है, फायदा आपका होना है। लेकिन मैं जानता हूं कि ज्यादातर लोगों ने यह अभ्यास नहीं किया होगा, क्योंकि मेहनत लगती है ना, सोचने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तकलीफ भी होती है, या फिर ठीक है यार बाद में सोच लेंगे। अरे बाद में भी क्या सोचना है, परीक्षा हॉल में सोच लेंगे, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है। नो डाउट की बड़ी बात नहीं है, वहां आप सीधे लिख के भी आ जाएंगे, लेकिन जिन्होंने अभ्यास किया है वो आपसे बेहतर लिख के आएंगे, और अगर वो आपसे बेहतर लिख करके आएंगे तो वो आगे निकल जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे, एक सीधा सा गणित है। दोस्तों, आइए अब हम कुछ दूसरी घटनाओं को देखते हैं। आपने आज के अखबारों में पढ़ा होगा कि भारत सरकार ने जो व्हाट्सएप मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है उसको एक नोटिस भेजा है कि आप जो प्राइवेसी पर अभी अपनी नई पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं, इस पर आप जवाब दीजिए, हम इसे स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। तो देखिए क्या होता है, चूंकि सोशल मीडिया आपके सिलेबस में है तो ये नया डेवलपमेंट आपको ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि इसका संबंध सीधे सीधे हमारी प्राइवेसी से है, है ना, और निजता का अधिकार आप देख रहे हैं कि उस पर कितनी जबरदस्त रूप से बातें हो रही हैं। ब्लैक फंगस का नाम आप सुन रहे हैं, जिसका अंग्रेजी में जो बीमारी है म्यूकोर मिकोसिस नाम है, और राजस्थान ने तो इसको बकायदे महामारी घोषित कर दिया है। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, है ना, कि अभी ये जो कोरोना हो रहा है, स्टेरॉइड और रेमडेसिविर, ये सब दवाइयाँ दी जा रही हैं, खासकर स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट के रूप में अब ये देखा जा रहा है कि ये जो ब्लैक फंगस है ये बीमारी पनप रही है और काफ़ी तेज़ी के साथ फैल रही है भी महामारी की दृष्टि से। तो ये कह लीजिए कि एक नई चुनौती हम सबके सामने आई है। फ्रेंड्स, आपने न्यूज़ में सुना होगा कि दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है, वहाँ बारिश वारिश खूब हो रही तो ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। खासकर ये जो मौसम विभाग होता है ये चार तरह के अलर्ट घोषित करता है, और इसे आप बकायदे ट्रैफिक लाइट से समझ सकते हैं, बहुत आसान है। अदरवाइज सीधे याद करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ट्रैफिक लाइट से इसे आसानी से समझा जा सकता है। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि प्री में कभी कुछ पूछ भी लिया जाए, बहुत आसान है, तो इसे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। आपकी सुविधा के लिए मैं इसे थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, जब आप ट्रैफिक में जाते हैं तो आपको ग्रीन लाइट दिखाई देती है, तो ग्रीन लाइट का मतलब क्या है कि सब ठीक ठाक है, आप अपनी गाड़ी निकाल ले जाइए, आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। तो ग्रीन, अगर ये कलर्स कोड कहलाते हैं, है ना, तो अगर ग्रीन अलर्ट दिया जा रहा है तो मतलब चिंता की कोई बात नहीं है, वो कोई एडवाइजरी जारी नहीं करेगा कि आपको ये करना है वो करना है, मतलब सब ठीक ठाक है। इसके बाद दोस्तों, जब ग्रीन लाइट के बाद जो दूसरी लाइट आती है, देखिए वो क्या होती है, येलो लाइट, यानी कि अब आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, रेड होने वाली है, है ना, येलो लाइट मतलब बी अवेयर, आप अलर्ट हो जाइए। तो येलो अगर कोड आ रहा है, येलो अलर्ट किया जा रहा है, मतलब कि अवेयर हो जाइए, थोड़े से थोड़ी सी चिंतित होइए, थोड़ी सी तैयारी रखिए, मतलब एकदम निश्चिंत होकर के मत घूमिए, येलो लाइट। इसके बाद है तीसरी ऑरेंज लाइट। ऑरेंज इसका मतलब है कि अब आप गंभीर स्थिति के लिए बिल्कुल तैयार रहें, एक्सट्रीम कंडीशन आने वाली है। तो अब आप देख लीजिए, तो आपको चेतावनी जारी कर दी गई कि कभी भी आपको यहां से निकाला जा सकता है, तो सामान वामान बांध लीजिए, तैयार रहिए इसके लिए। इसके बाद रेड लाइट। रेड लाइट तो आप जानते हैं कि बिल्कुल खतरनाक, अब आप रुक जाइए, अगर आप पार करेंगे इस चौराहे को तो एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि दूसरे तरफ का रास्ता चालू हो गया है। रेड लाइट, रेड कलर्स जो है ना, लास्ट कोड है, इसका मतलब है कि अब एक्शन लेना है और स्थिति बहुत गंभीर हो रही है। ये वेदर कंडीशन के लिए होता है, और अब यहाँ जो लोग हैं जनधन की रक्षा के लिए, अब इन्हें यहाँ से निकालना पड़ेगा। रेड अलर्ट, रेड अलर्ट। तो ये चार तरह के अलर्ट होते हैं, मैंने ट्रैफिक के माध्यम से समझाने की आपको कोशिश की है, और मुझे लगता है कि बात आपकी समझ में भी आ गई होगी, कोई खास कठिन नहीं है। फ्रेंड्स, आपको ध्यान होगा कि मैंने कैंटर कछुआ के बारे में आपको बताया था कि ये चंद्रगिरी नदी में ये कछुआ मिला है। मेरे पास एक दो स्टूडेंट का फ़ोन आया, एक दो स्टूडेंट के सॉरी मेल आए, और उसमें उन्होंने लिखा कि सर ये पयस्वनी नदी में मिला है, और उन्होंने अखबार की बकायदे फ़ोटो भी भेजी। चलिए, मैं इस प्रयास की प्रशंसा करता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेसिकली ये जो पयस्वनी नदी जो है, इसी का एक नाम चंद्रगिरी नदी भी है, चंद्रगिरी नदी भी है, तो ये चीज आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। एक स्टूडेंट ने इसी को बेस बना करके एक और मेरे पास अखबार में छपी खबर भेजी है, अच्छी है, मैं सोच रहा हूं कि आपको बता दूं। और उन्होंने नाम लिया है एक अखबार में छपा, सिलेकैंथ मछली। ये हिंद महासागर का जो मेडागास्कर तट है वहां मिला है, 42 करोड़ साल पुरानी ये मछली है, और 1938 तक ये विलुप्त मानी जाती है। तो सिलेकैंथ मछली, बस इतना भर नाम आप याद रख लीजिए, आपका काम बन जाएगा। ज्यादा ज्यादा हिंद महासागर मेडागास्कर का तट, ये भी आप याद रख लीजिए। दोस्तों, आइए, अब थोड़ा सा वक्त है और हम लोग मुख्य विषय के बारे में बात करते हैं, वो है फील्ड कमांडर। ये फील्ड कमांडर क्या है, इसकी बात मैं क्यों कर रहा हूं? दोस्तों, आपने अगर परसों की ही बात है, अगर प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुना, संबोधन नहीं बल्कि वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से सीधे बात कर रहे थे, वर्चुअली बात कर रहे थे, मीटिंग ले रहे थे आप कह लीजिए, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स जो होते हैं, कहीं उनको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आप बोलते हैं, कहीं वो डिप्टी कमिश्नर बोला कहा जाता है उनको, तो उन्होंने नाम दिया कि आप जो हैं बेसिकली आप सब फील्ड कमांडर हैं। अच्छा नाम मुझे लगा, फील्ड कमांडर। तो पहली बात तो यह है कि मैं चाहूंगा कि आप सब इस टॉपिक पर लिखें, कुछ लिखें, फिर से आप अपनी आत्मा में, अपने अंदर एक कलेक्टर की आत्मा का आह्वान करें, और फिर आप इसका उत्तर लिखें, 100 शब्दों में ही लिखें कि आपको फील्ड कमांडर कहा गया है तो क्यों कहा गया है, बस केवल। और मैं इसका पैटर्न भी बता देता हूं, आप केवल 1, 2, 3, 4 पॉइंट लिखते चले जाएं कि पहला इसकी वजह से फील्ड कमांडर कहा गया, दूसरा इसकी वजह से फील्ड कमांडर कहा गया, तीसरा इसकी वजह से फील्ड कमांडर कहा गया। देखिए, अभी आप हो सकता है कि जिला कलेक्टर के अधिकार क्या होते हैं, कर्तव्य क्या होते हैं, इनके बारे में आपने कहीं पढ़ा नहीं हो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो जिला कलेक्टर क्या करता है कुछ ना कुछ तो आपकी जानकारी में होगा ही। और फिर जब हम लोग रहते हैं, जिले में रहते हैं, तो मालूम होता है कि कलेक्टर के पास क्या पावर्स हैं, कलेक्टर क्या कर रहा है। अभी खासकर कोरोना पीरियड में आप देख रहे हैं कि कलेक्टर्स की क्या भूमिका है, तो इतना व्यावहारिक ज्ञान तो हम लोगों को होता ही है, सबको होता है। अगर आप अपने पिताजी से पूछेंगे जिन्होंने कभी सिविल सर्विस के बारे में सोचा भी नहीं है, तो वो भी आपको बता देंगे कि हाँ कलेक्टर क्या क्या करता है। लेकिन यहां जो आपके लिए चुनौती होगी उसे ध्यान दीजिए। चुनौती यह है कि शब्द है कमांडर, फील्ड कमांडर। यह दफ्तर में बैठ करके कमांडर नहीं है, यह फील्ड कमांडर है, फील्ड में है और कमांड कर रहा है। कमांडर का मतलब है कमांड कर रहा है ना? तो आपको केवल इन्हीं तथ्यों को लेना होगा, फील्ड कमांडर वाले ही तथ्यों को लेना होगा, याद रखिए। और दूसरी बात है कि उसे कुछ इस तरीके से लेना होगा या उन तथ्यों को आपको इस तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा जिसमें ये दिखाई दे, ये लगे कि नहीं वो कमांडिंग पोजीशन में है, वो नियंत्रित कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, सब कुछ उनके हाथ में है, वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। अगर आप इससे भटक जाएंगे और कुछ दूसरे तथ्य डालने लगेंगे तो एग्जामिनर तुरंत समझ जाएगा कि नहीं, आपके समझने में थोड़ी सी चूक हो गई है, मामला गड़बड़ है। तो दोस्तों, आप इस काम को करें, मैं ज्यादा कुछ बताने नहीं जा रहा हूं, लेकिन बेहतर होगा कि आप इस पर थोड़ा सा वक्त लगाएं। दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से चार दोस्तों के नाम हैं अंजलि पाठक, विजय कुमार दास, रवि दत्त और अंजलि सोनी सीधी मध्य प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।